नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 55 उसके 13 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। कृपया आप मेरे साथ भजन संहिता 55 उसके 13 पद को निकाल लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। मेरे विचार में दाऊद अपने मित्र अहितोपेल के बारे में कह रहा है। यह इसराइल के साथ धोखा करने वाले मसीही विरोधी का चित्रण है। वह उनका शुभ चिंतक बनकर उनके साथ वाचा बांधेगा और फिर उन्हें धोखा देगा। भजन संहिता 55 उसके 14 पद में हम पढ़ते हैं, हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे, हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। मनुष्य जब आपके साथ होता है तब वह आपके साथ और आपके लिए प्रार्थना करेगा, परंतु ज्यों ही आपकी पीठ उसकी ओर मुड़ेगी वह छुरा घोंप देगा। हमारे चारों ओर ऐसे मनुष्य अधिकाई से पाए जाते हैं। यदि ख्रिस्त विरोधी कल आ जाए तो सूर्यास्त तक उसके अनेक अनुयायी बन जाएंगे। अगला पद दाऊद के श्राप का है। सुनिए भजन संहिता 55 के 15 में, उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पाद भरा है। वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं। हम लोगों को प्रायः कहते हुए सुनते हैं, तेरा सत्यानाश हो जाए। यह एक भयानक बात है। दाऊद ने अहितोपेल के लिए यह कहा था कि वह जीवित ही अधोलोक में उतर जाए। इसके विपरीत प्रभु यीशु ने उससे घृणा करने वालों के लिए प्रार्थना की और हमें भी आदेश दिया गया कि हम भी वैसा ही करें, अर्थात अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। भजन संहिता 55 उसके 16 और 17 पद में लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। यह दाऊद की हताशा का कैसा चित्रण है। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा। मेरे मित्रों, बैरी आपके लिए एक अच्छा काम यह करेगा कि आप उसके सताव के कारण पहले से अधिक प्रार्थना करेंगे। अब ख्रिस्त विरोधी का चित्रण देखें। वह तो एक झूठा मनुष्य है। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने कहा कि शैतान तो आदि से ही झूठा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 44 पद में, ख्रिस्त विरोधी भी तो सीधा अधोलोक से निकलेगा। भजन संहिता 55 उसके 21 पद में लिखा हुआ है, उसके मुंह की बातें तो मक्खन की सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। अहितोपेल दाऊद का शुभ चिंतक होने का नाटक कर रहा था और भीतर ही भीतर वह दाऊद के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। वह ख्रिस्त विरोधी की एक झलक है। भजन संहिता 55 उसके 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने शत्रुओं को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 19 पद में पौलुस यही कहता है, हे प्रिय बालकों, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। अपने विश्वासघातियों को प्रभु के हाथ में छोड़ दो। मैं अपने पिछले कई वर्ष की सेवकाई में इस बात को मैंने अनुभव किया है और ज्ञान के साथ इस विषय पर चर्चा करने योग्य स्वयं को मानता हूँ। मैंने देखा है कि वैरी से व्यवहार करने में परमेश्वर मुझसे अधिक अच्छा काम करता है। वह जानता है कि यह काम कैसे सबसे अच्छा किया जाए। अपना बोझ प्रभु पर डाल दो और वह सब कुछ संभाल लेगा। महाक्लेश के युग में इसराइल अंत में प्रभु की ओर आएगा, क्योंकि उसके पास अन्य कोई भी मार्ग नहीं होगा। भजन संहिता 55 उसके 23 पद में लिखा है, परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। आज आपके बारे में क्या है, मेरे बारे में क्या है? हम इस संसार में कैसे निर्वाह करेंगे? क्या हम अपने अपराधियों से घृणा करें और उनकी आलोचना करें? क्या हम धोखा खाने पर रोएं? जी नहीं, हम प्रभु में विश्वास रखें। यही मुक्ति का मार्ग है और उन्हें हम प्रभु के हाथ में छोड़ दें। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 55 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 56 में आते हैं, जिसका विषय है दाऊद का भय और विश्वास। यह भजन समूह एक आनंददायक भजन संग्रह है जिसे मिकताम कहते हैं। मिकताम का अर्थ क्या है? इसका मूल अर्थ है खोद कर लिखा गया, जो चिरस्थाई है। अतः ये भजन उन विषयों की चर्चा करते हैं जो सारभूत हैं, सदाकालीन हैं और अटल हैं। भजन संहिता 57 उसके 7 पद में दाऊद कहता है, मेरा मन स्थिर है। तो यह मिकताम है। डेलीटस ने भजन संहिता 56 को भागते हुए मनुष्य का आनंददायक साहस का नाम दिया है। आपको स्मरण होगा कि भजन संहिता 55 में दाऊद ने कहा था, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते, कि वह उड़ जाता और पर्वतों में विश्राम पाता। इसे हम पद 6 और 7 में देखते हैं। इस भजन में उसकी मनोकामना पूरी होती है। वैरी बाहर है और दाऊद गहन संकट में है। दुष्टों ने चारों ओर से उसे घेरा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने उसे मुक्ति दिलाई। इस भजन की ऐतिहासिक भूमि यह है कि फिलिस्तियों ने उसे गात नगर में पकड़ लिया था। दाऊद का यह अनुभव महाक्लेश का एक चित्रण है। सब भजनों में भविष्यवाणी का अंश है। इस इतिहास में दाऊद का अनुभव और भविष्यवाणी इसराइल का भावी अनुभव के मध्य हमारे लिए संदेश विहित है। सब भजनों में हमारे लिए एक विशेष संदेश है। इस भजन का शीर्षक है प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजों के साथ दाऊद का मश्किल। तो आइए हम भजन संहिता 56 उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। मैं आपको डॉक्टर गबलिन का अनुवाद सुनाता हूँ। वह इब्रानी भाषा के ज्ञाता थे। कहते हैं, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, अन्यथा मनुष्य मुझे निगल जाएंगे। वे मुझसे पूरा दिन लड़ते और सताते हैं। वे मुझे घूरते रहते हैं और निश्चय ही खा जाएंगे, क्योंकि मुझसे लड़ने वाले अभिमानी बहुत हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि दाऊद अपने वैरियों द्वारा घिरा हुआ है। वह तवे पर बैठा है। वह इस संकट में क्या करे? भजन संहिता 56 के 3 में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। ध्यान दीजिए, क्या दाऊद डर रहा था? निश्चय ही वह डरा हुआ था। एक दिन मैं कह रहा था कि मुझे हवाई यात्रा से डर लगता है, तो एक दंपति ने सोचा कि मेरे विश्वास में कमी है। मेरे मित्रों, भय से आपके जीवन में विश्वास उभरता है। सुनिए दाऊद क्या कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। वे जो आराम से बैठकर कहते हैं मुझे कोई भय नहीं, प्रकट करते हैं कि वे परिस्थितियों और समस्याओं के प्रति अनभिज्ञ हैं, वरन संवेदनाहीन हैं, या उनका विश्वास मूर्खता का है। दाऊद तो स्पष्ट कहता है कि वह डर रहा था, परंतु वह मुक्ति के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखता था। क्या आप में भय और विश्वास एक साथ विद्यमान हो सकते हैं? धर्मशास्त्र से प्रकट है 1 यूहन्ना 4:18 पद में, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। जी हाँ, प्रेम ऐसा ही करेगा। परंतु आप विश्वास करके भी डर जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि कुछ लोगों को इस बात से ढाड़स मिलेगा, क्योंकि अनेक मूर्खतापूर्ण बातें सुनने में आती हैं जो धर्म शास्त्र आधारित नहीं है। भजन संहिता 56:8 में लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, परमेश्वर आपके और मेरे आने जाने का हर समय का ध्यान रखता है। मैं भजनों के अपने अध्ययन में सदैव इस बात पर विचार करता हूँ, जब से मैं सेवा में हूँ मैंने अनेक स्थानों में प्रचार यात्रा की है। कभी कभी मैं अपनी पत्नी से भी पूछता हूँ, मैंने वहाँ क्या प्रचार किया था, मैं तो भूल जाता हूँ, परंतु परमेश्वर लिख लेता है। यदि मैं उसकी पुस्तक तक पहुँच पाऊँ तो मुझे बहुत सहायता मिल जाएगी। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। कहा जाता है कि प्राचीन युग में पूर्व क्षेत्र के विलाप करने वाले अपने आंसुओं को किसी पात्र में जमा करके अपने प्रियों की कब्र पर रख देते थे कि उनका दुख दिखाई दे। इसी संदर्भ में मैं जॉन वनियन का कथन सुनता हूँ, परमेश्वर हमारे आंसू कुप्पी में रखता है कि उन्हें पोंछ डाले। यह पढ़कर तो मुझे ऐसा लगता है कि अधिकाधिक और रोऊं। हमें अधिकाधिक रोने की आवश्यकता है। मैथ्यू हेनरी ने कहा, उत्पीड़ित ईश्वर भक्तों के आंसू बोतल में भरकर रखे जाते हैं और परमेश्वर के भंडार में सुरक्षित रहते हैं। भजन संहिता 56:10 में लिखा है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मुझे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, आप बाइबल की बहुत ही अधिक चर्चा करते हैं, आप परमेश्वर की वचन की अनंत चर्चा करते हैं। दाऊद ने भी तो यही किया। सच तो यह है कि परमेश्वर के वचन की सराहना बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए मुझे क्षतिपूर्ति करना पड़ता है। भजन संहिता 56:11 में लिखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर का यह संसाधन और प्रवेश मार्ग कैसा अद्भुत है। भजन संहिता 16:13 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवतों के उज्याले में चलूं फिरूं। दाऊद ने अपने महापाप के बाद कहा, मैं परमेश्वर के समक्ष चलना चाहता हूं, जिससे कि मैं फिर से न फिसल जाऊं। जहां तक इतिहास बताता है वह फिर कभी नहीं गिरा। बेबीलोन का राजा संपूर्ण वर्ष प्रतिदिन ऐसा पाप करता था, वे विचार का पाप। उसके लिए यह एक आम अभ्यास था, परंतु दाऊद का यह अभ्यास नहीं था। दाऊद ने कहा, मैं परमेश्वर के सामने जीवतों के उजाले में चलूं फिरूं। आज हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलने का आदेश है। गलातियों के पत्री 5:16 में लिखा है कि आत्मा में चलने से हम शरीर की लालसाओं से बचेंगे। परमेश्वर ने हमें चलने के लिए लाठी से कहीं अधिक दिया है, उसने हमें पवित्र आत्मा का अंतर्वास दिया है। आत्मा में चलने का अर्थ है परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर पूर्ण रूप से निर्भर करना। यह अति व्यवहारिक है। गलातियों की पत्री के अध्ययन में हम देखेंगे कि हमें अपने ऊंचे पद से उतरकर आत्मा में चलना है और प्रयास करके अपना आचरण ही बना लेना है। निश्चय ही हम गिरेंगे, परंतु हमें फिर से उठकर चलना है, प्रसार करते करते और प्रतिदिन परमेश्वर को सौंप कर अपने आप को आत्मा में चलाना सीखना है, तब हम सीख पाएंगे भी। मित्रों, भजन संहिता 56 यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम 57 में आते हैं, जिसका विषय है दया की पुकार। यह दूसरा मिकताम भजन है जिसके लिए लिखा है कि वह ऑल तस्हेत है, अर्थात नाश मत कर। भजन का अध्ययन करने पर ज्ञात होगा कि यह वास्तव में अर्थपूर्ण है। इसका शीर्षक है प्रधान बजाने वाले के लिए अल्तशहेत, राग में दाऊद का मिकताम, जब वह शाउल से भागकर गुफा में छिप गया था। दाऊद मृत सागर के एंगदी क्षेत्र की गुफाओं में था, जो समुद्री सतह से नीचे है और गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है, परंतु शीत ऋतु में बड़ा ही मनोरम स्थान होता है। वह एक गंवारू क्षेत्र है। अदुर्लभ की गुफा भी उसी क्षेत्र में है। अनेक टीकाकारों का मानना है कि यह भजन अदुलाम की गुफा के संदर्भ में है। वहीं कहा जाता है कि दाऊद ने अनेक भजनों पर मनन किया था। इन भजनों में प्रभु यीशु के कष्टों की छाया है और शेष रहे इसराइलियों के कष्टों की भविष्यवाणी है। जब याकूब के कष्टों का समय आएगा, सब भजन हमें भी संदेश सुनाते हैं। यही परमेश्वर के वचन का अधिक चमत्कारिक बात है। भजन संहिता 57 के 1 पद में लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मेरी प्रार्थना दाऊद के समान ही है। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। मैं तो चाहता हूं कि परमेश्वर मुझ पर न्यायी और धर्मी होने की अपेक्षा अनुग्रहकारी हो, अन्यथा मुझे ताड़ना ग्रहण करना होगा। मैं चाहता हूं कि वह मुझ पर दयावान और अनुग्रहकारी हो, दया का धनी हो। मेरे लिए उसके पास बहुत है, पर मुझे और भी अधिक की आवश्यकता है। आपके लिए भी उसके पास कमी नहीं है। मैं तेरा शरणागत हूं, डॉक्टर गबली ने कहा, तेरी शरण में मुझे सुरक्षा मिलती है। दाऊद को इस शरण का अनुभव था, परंतु इसराइल जाति को नहीं था। मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय उसके 37 पद में प्रभु यीशु ने कहा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पत्थरवाह करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। परंतु इसराइल तो आज तक उसके पंखों के नीचे नहीं आया है। क्या आप उसके पंखों के नीचे आने के लिए तैयार हैं? दूसरे शब्दों में उसके आज्ञाकारी बने, उससे प्रेम करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 पद में यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, पवित्र आत्मा में चलोगे। अब इन अद्भुत उक्तियों पर ध्यान दीजिए। भजन संहिता 57 के 3 पद में लिखा है, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। यह भविष्यवाणी शब्दशः पूरी होगी जब मसीह यीशु अपने पूर्ण सामर्थ्य और अपरंपार महिमा में पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आएगा। तब शेष रहे इसराइली भक्त कहेंगे, यशायाह नबी के पुस्तक 25 अध्याय उसके 9 पद में, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। भजन 57 के 4 पद में लिखा है, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। पहला पत्रस की पत्री 5 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि शैतान इस संसार में चहलकदमी करते हुए गरजता है और खोजता है कि किसे फाड़ खाए। प्रसंगवश उसके साथ अनेक छोटे छोटे शेर भी हैं कि उसकी सहायता करें। मित्रों, स्मरण रखें कि मिकताम भजन स्थायी और दीर्घकालीन बातों की चर्चा करते हैं, आधारभूत और चिरस्थायी बातें। भजन संहिता 57 के 7 पद में हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। अब इस मन भावन अभिव्यक्ति पर ध्यान दें। भजन 57 के 8 पद में, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पांव फटते ही जाग उठूंगा। डॉक्टर गबलिन का अनुवाद है, मैं प्रातः तड़के जागूंगा। अति उत्तम अभिव्यक्ति है। पाप और कष्टों की रात जाती रही, शैतान का राज्य समाप्त हो गया, धार्मिकता का सूर्य उदय होकर पंखों में रोग हरण लाया है। यह कैसी महान बात है, इस भजन में कैसा आश्वासन है। मित्रों, यहाँ पर भजन 57 समाप्त होता है और अब हम भजन 58 में देखते हैं, जिसका विषय है बैरी को शाप की प्रार्थना। देखिए, यह एक अलतशहेत और मिकताम भजन है। इसका अर्थ है कि यहाँ एक आधारभूत एवं चिरस्थायी बात है। इसका अर्थ है नाश मत कर। इसका आरंभ एक प्रश्न से है, वह कौन है जो यह प्रश्न पूछता है, न्यायियों का क्या तुम यह कहते हो, क्या तुम सीधाई से न्याय करते हो? वह दिन आएगा जब प्रभु यीशु न्यायियों को एकत्र करेगा कि अपना लेखा दे। परमेश्वर पूछता है कि क्या धार्मिकता मौन धारण किए हुए है। उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यह वैरी को दंड देने की एक और प्रार्थना है। आइए हम भजन संहिता 58 उसके 3-6 पद को पढ़ें। लिखा है, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं, उनमें सर्प का सा विष है, वे उस नाक के समान हैं जो सुनना नहीं चाहता, और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों ना मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। हे परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे, हे यहोवा, उन जवान सिंहों की दाढ़ों को उखाड़ डाल। दाऊद इस भजन में अपने बैरियों पर 6 विपत्तियों की प्रार्थना करता है, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे। हमने देखा है कि हमारा बैरी एक शेर की नाई है। कुछ का कहना है कि एक विश्वासी ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता है। मैंने तो प्रार्थना की है कि परमेश्वर शैतान के साथ पूरा न्याय करे। वह एक गरजते हुए शेर की नाई है और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर उसके दांत तोड़ देगा। मैं तो इसे अविश्वासी व्यवहार कभी नहीं मानता। दाऊद अपने वैरियों के बारे में कह रहा है, वह व्यवस्था का मानने वाला था, अतः वह न्याय की मांग कर रहा है। अब वह एक और रूपक काम में लेता है जिसे हम भजन संहिता 58 उसके 7 पद में पढ़ते हैं, वे घुल कर बहते हुए पानी के समान हो जाए, जब वे अपने तीर चढ़ाएं तब तीर मानो दो टुकड़े हो जाएं। यहां पर हम उसकी प्रार्थना के दूसरी बात को देखते हैं। दुष्टता तो प्रलयंकारी थी। वह याचना करता है कि दुष्टता की बाढ़ निकल जाए। और तीसरी प्रार्थना उसकी है, जब बैरी तीर चलाए तब उसके तीर टुकड़े टुकड़े हो जाएं। बैरी उस पर निशाना साधे हुए थे। यहां हमारे पास कैसा विचित्र चित्रण है। भजन संहिता 58 के 8 में हम पढ़ते हैं, वे घोंघे के समान हो जाएं जो घुलकर नष्ट हो जाता है, और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जिसने सूरज को देखा ही नहीं। चौथी बात है कि वे घोंघे के समान हो जाएं जो घुलकर समाप्त हो जाता है, सबके सब नष्ट हो जाएं। उस देश में एक घोंघा होता है जिसे स्लाइम वर्म कहते हैं। वह घोंघा सूर्य की गर्मी में पिघल जाता है। दाऊद कहता है कि वैरी द्वारा छोड़ी गई स्लेमा संसार से मिटा दी जाए। और पांचवी बात है कि स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जिसने सूरज को देखा ही नहीं, अर्थात वे अपने दुष्ट मन में जो योजना बनाते हैं वह कभी पूरी न होने पाए, वह शून्य हो जाए। भजन संहिता 58 उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, इससे पहले कि तुम्हारी हांडियों में कांटों की आंच लगे, हरे व जले दोनों को वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा। छठवीं बात, इससे पहले कि तुम्हारी हांडियों में कांटों की आंच लगे वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा। कांटेदार झाड़ियों को आग जलाने के काम में लिया जाता था। इसके पश्चात तेज हवा से उसकी राख उड़ जाती थी। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, इससे पहले कि वे अपना कुकर्म आरंभ करें उन्हें नष्ट कर दे, इससे पहले कि उनकी आग भड़के और वे कुकर्म को दागे उनका विनाश हो जाए। यह एक अद्भुत प्रार्थना है। मित्रों, हम आगे देखते हैं भजन संहिता 59 और 60 पद में। विषय है वैरी द्वारा घिरे परमेश्वर के लोग। भजन संहिता 59 पूर्ववर्ती दोनों भजनों से संबंधित है। यह भी एक अल्तश हेत नष्ट मत कर और दाऊद का मिकताम है। इस भजन के समय भी दाऊद बैरियों से घिरा हुआ था। भविष्यवाणी के रूप में यह भजन शेष रहे भक्त इसराइली के कष्टों की गाथा है। महाक्लेश के समय जब वे वैरियों द्वारा घेर लिए जाएंगे उस समय की ये बात है। इसका उपरिलेख पहला शामुएल की पुस्तक 19 अध्याय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है, जब शाऊल के भेजे हुए लोगों ने घर का पहरा दिया कि उसको मार डालें। भजन संहिता 59 उसके 1-3 पद में हम पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हथियारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरोध इकट्ठे होते हैं। यह दाऊद का स्वभाव सूचक भजन है। इसका अंत परमेश्वर के मुक्ति में विश्वास और भरोसे से होता है। भजन संहिता 59 उसके 16-17 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु मैं तेरा सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। निश्चय ही परमेश्वर ने दाऊद का उद्धार किया था। मेरे मित्रों, परमेश्वर अपने जनों को कभी नहीं त्यागता है। इसराइल के शेष रहे भक्तों को प्रभु यीशु अपने आगमन पर स्वयं बचा लेगा और अन्य जातियों का न्याय करेगा। अब हम भजन संहिता 60 में देखते हैं। भजन संहिता 60 मिक्तम भजनों में अंतिम भजन है और एदोमियों पर दाऊद की विजय की गाथा सुनाता है। एदोमी पूर्ण रूपेण पराजित किए गए थे और उनका अस्तित्व ही मिट गया था। भविष्यवाणी रूप में यह इसराइल के शेष रहे भक्तों के उद्धार की भविष्यवाणी है, जो महाक्लेश में संकट उठा रहे होंगे। तो आइए हम पढ़े भजन संहिता 60 उसके 1 पद। लिखा है, हे परमेश्वर तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है, तू क्रोधित हुआ फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। यह उत्तर है। तब हम 60 उसके 6 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला, मैं प्रफुल्लित होऊंगा, मैं शेकेम को बांट लूंगा और सुकोत की तराई को नपवाऊंगा। यह कैसे होगा? भजन संहिता 60 के 9 पद में लिखा है, मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा, एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? इसका उत्तर है भजन 60 उसके 10 पद में, हे परमेश्वर क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता? परमेश्वर अपने भक्तों का उद्धार करता है और किसी भी युग में करेगा, चाहे वे परेशानी, कठिनाई और पाप में हो। ओह, परमेश्वर कैसा भला है। मेरे प्रिय मित्रों, आज भी परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, चाहे आप कहीं पर किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। जिस प्रकार उसने दाऊद की सहायता की, वह आज भी आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9958820414, और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अभी।